This is an ABP Life podcast.
8 जुलाई की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक प्राइवेट मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 200 भारतीय जो रूस की तरफ से यूक्रेन रूस युद्ध में लड़ रहे थे इनको भारत वापस लाने की एक मांग रखते हैं और ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने ये मांग मान भी ली है। 200 भारतीय सैनिक वो भारतीय जो रूस की तरफ से लड़ रहे थे उन्हें वापस भेजा जाएगा। इनमें से मैं बताना चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि 4 जो है वो जंग में अपनी जान हार भी चुके हैं और आज डिटेल में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे ये रूस पहुंचे, क्या इनकी सिचुएशन थी, क्यों ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे थे कि ये गुहार लगा रहे थे हमें अपने देश वापस आना है, क्या कुछ हुआ, इन सब पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं हूं मानसी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर यह है FII, जहां आज हमारे साथ डिटेल में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट।
जय हिंद मानसी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं।
जी सर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी वो यही कि अगर आप ये बताएं कि ये भारतीय जो है वो कैसे रूस पहुंचे हैं, कब पहुंचे हैं, आखिर किस कारण पहुंचे हैं और इनकी संख्या क्या।
ये जो 200 भारतीय हैं जो रूसी सेना में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस में रूस पहुंचे। कई टूरिस्ट वीजा पे पहुंचे, कई बिजनेस के नाम पे पहुंचे, या कईयों को ऑलरेडी उन्होंने मन बना लिया था कि वो जाके वहां रूस की सेना में लड़ेंगे। लेकिन जो ये सारे 200 हैं, ये जिस भी कारण से रूस पहुंचे हों, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से रूसी सेना में इन्होंने भर्ती ली, क्योंकि रूसी सेना इनको 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति महीना का वेतन देती है और इतने बड़े पैसे के लिए ये सारे वहां राजी हो गए। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी इंसान को रूसी सेना ने पकड़ के अपनी सेना में भर्ती नहीं किया है, खास करके जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, ये सारे अपने ओन अकॉर्ड पे गए वहां क्योंकि पैसा इनको अच्छा मिल रहा था। लेकिन कई वहां जो गए उन्होंने सेना में भर्ती ली, वो सडनली उन्होंने पाया कि ये जो जंग का मैदान है ये तो बिल्कुल अलग है और वो फिर वापस भी आना चाहते थे और फिर सोशल मीडिया पे गुहार लगाई गई और फिर प्रधानमंत्री मोदी जब रूस की विजिट पे गए तो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से रिक्वेस्ट की और राष्ट्रपति पुतिन मान गए। तो ये एक बार फिर दिखाता कि भारत और रूस के रिश्ते और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से भारत के युवकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, पैसा एक चीज होती है लेकिन जंग की सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। तो आपको कोई भी ज्यादा से ज्यादा पैसे का लालच दे या आपको एक बहुत बड़ा वेतन दिखाए जो कि एक ड्रीम वेतन हो, लेकिन जंग के हालात बिल्कुल अलग होते हैं और ये चीज सोच समझ के उनको ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर वो सोच समझ के कदम नहीं उठाते हैं तो बहुत जोखिम पड़ सकती है, क्योंकि युद्ध का मैदान आसान नहीं होता।
जी, आपने चूंकि कहा भी कि वहां जब वो गए तो उन्हें पता लगा कि ये जंग का मैदान कैसा था, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे किस तरह हालात अलग है?
मानसी जी देखिए, जब जंग का मैदान होता है तो वहां पे गोला बारूद किसी भी वक्त कहीं पे भी गिर सकता है। आज आप एक सेकंड पे आप एक अपने साथी सैनिक के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि वो जीवित नहीं है क्योंकि उस पे गोली लगी और वो वहीं पे उसकी मौत हो गई। तो जब ऐसे आदमी ये चीज देखते हैं तो ये नॉर्मल है कि अंदर से वो टूट जाते हैं। देखिए, कोई भी सैनिक जो होता है एक व्यवसायिक सेना में, एक प्रोफेशनल सेना में, उनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के दौरान उनकी फील्ड फायरिंग होती है, उनकी स्मॉल आर्म्स फायरिंग होती है, उनको सही अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। तो जब एक ट्रेंड सैनिक युद्ध के मैदान में उतरता है तो उसको पता होता है कि ऐसा क्या होगा मेरे साथ या मेरे साथियों के साथ, वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि सैनिक जितना भी ट्रेंड हो, लेकिन जब पहली गोली चलती है तो उसमें एक अलग सी फीलिंग तो आती है, लेकिन क्योंकि वो अच्छी तरह से ट्रेंड होता है तो वो तितर बितर नहीं भागता है, वो अपने आप को काबू में रखता है और जैसे सिखलाई हुए तरीके से वो बैटल ड्रिल, बैटल प्रोसीजर करता है जो कि एक सैनिक से एक्सपेक्टेड है युद्ध के मैदान में। लेकिन कोई एक युवक हो जिसके पास कोई सैनिक ट्रेनिंग ना हो और अचानक एक बड़े पैसे के ख्वाब में वो एक दूसरी देश की सेना ज्वाइन कर लो, वो सीधा युद्ध के मैदान में पहुंच जाए। अब उसके पास कोई बैकग्राउंड ट्रेनिंग तो है नहीं और अचानक वहां पे जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां तो गोलाबारी चल रही है, यहाँ लाश पड़ी है, वहां लाश पड़ी है। तो इससे फर्क तो बहुत पड़ रहा है जो इंसान ट्रेंड ना हो और जो इंसान ट्रेंड हो।
यानी कि ये कहना गलत है कि वो भारतीय सैनिक थे, वो आम भारतीय थे जो वहां सैनिक बल के लड़ रहे थे।
जी जी, वो नॉर्मल सिविलियंस थे जो कि नौकरी के तलाश में थे और उनको पता चला कि रूसी सेना उनको बहुत बड़ा पैसा दे रही है, 1.5 से 2 लाख के बीच में। कोई मीडिया रिपोर्ट्स 1.5 लाख प्रति महीना कह रही है, कुछ 2 लाख कह रही है, तो इसलिए मैं 1.5 से 2 लाख के बीच में कह रहा हूँ। तो जो इतना बड़ा पैसा उन्होंने देखा तो ऑब्वियसली कोई भी होगा जिसके पास नौकरी नहीं होगी तो उसका मन तो करेगा चलो मैं 5-6 महीने नौकरी कर लूं, मेरे आगे के कई कई साल सरल हो जाएंगे। तो गलती उनकी नहीं है क्योंकि पैसा का अमाउंट इतना बड़ा था, उनको नौकरी की तलाश थी। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जंग का माहौल बिल्कुल अलग होता है बनस्पत जो आप टीवी पे देखते हो, पिक्चरों में देखते हो या जो आप किताबों में पढ़ते हो। ये सबसे विपरीत होता है जंग का माहौल, क्योंकि और वहां पे वही टिक पाता है, वही उस जंग को देख सकता है जो प्रोफेशनली ट्रेंड होता है।
क्या आप हमें ये भी बता सकते हैं कि वो भारतीय पहुंचे कैसे, रूस की सेना में कैसे गए होंगे?
मानसी जी देखिए, कुछ तो यहाँ से ऑलरेडी उन्होंने अप्लाई किया था क्योंकि रूसी सेना की भर्ती खुली हुई है और उन्हें तो सैनिक चाहिए, चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों को सैनिक चाहिए क्योंकि 2 साल से ज्यादा हो गया दोनों देश एक दूसरे के युद्ध पे हैं। कई तो उन्होंने ये अप्लाई करके यहाँ से उनकी सेना भर्ती होने के लिए उन्होंने कागज भरे, कई वहां जब पहुंचे टूरिस्ट के वीजा पे या कोई कारोबार से तो उन्हें पता चला कि रूसी भर्ती खुली हुई है। जब उन्होंने पता चला कि इतना पैसा मिल रहा है तो उनका मन ऑब्वियसली कर गया कि मैं इतना पैसा तो शायद मैं भारत में इतने साल में कमाऊंगा, यहाँ मैं 1 महीने में कमा लूंगा। तो उन्होंने ऐसा अपना गणित ऐसी मैथमेटिक्स उन्होंने लगाई होगी और उन्होंने सोचा कि चलो 5-6 महीने 1 साल की नौकरी कर लेते हैं और उसके बाद फिर थोड़े फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन जो भी ये भर्ती जैसे मैंने पहले बताया ये सारी उनके ओन अकॉर्ड पे थी और वो वहाँ खुद रूसी सेना के पास गए भर्ती होने के लिए।
कि व्लादिमीर पुतिन और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, इनके बीच सहमति कैसे बनी?
देखिए अगर हम इतिहास में जाएं, रूस से पहले सोवियत संघ होता था और उसके बाद जब वो 15 देशों में टूटा 26 दिसंबर 1991 को, तो रूस सबसे बड़ा उन 15 देशों में से उभरा। तो चाहे सोवियत संघ हो चाहे रूस हो, दोनों के रिश्ते भारत के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं और इतने अच्छे रहे हैं कि कभी भी सोवियत संघ ने या रूस ने अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया भारत विरोधी गतिविधियों के लिए। और ये चीज अगर आप अमेरिका और पश्चिमी देशों से कंपेयर करोगे, वहां की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, जो हम पिछले कई सालों से देखते आए हैं कि कितनी कितनी भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं वहां और ये पश्चिमी देश कोई एक्शन नहीं लेते हैं, एक बयान तक नहीं देते हैं, एक्शन लेना तो दूर की बात है। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, आपको एक इंस्टेंस नहीं मिलेगा जहां पे रूस ने भारत विरोधी कोई गतिविधि तो वहां पनपने दियो। तो इस बैकग्राउंड में मेरा रीजन ये बैकग्राउंड बताने का ये था कि रूस भारत को बहुत इज्जत से देखता है, हमें बहुत प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर भारत ने कोई भी चीज कभी भी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मांगी है, रूस ने मना नहीं किया। पश्चिमी देशों ने ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं की है, उन्होंने हथियार बेचे हैं, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं की है, लेकिन रूस जो हम मांगते हैं ट्रांसफर टेक्नोलॉजी तक करने को तैयार है क्योंकि रूस देखता है कि भारत उसका एक अच्छा मित्र है और रूस की जो एक नेशनल थिंकिंग है उसमें भारत या भारतीयों की बहुत इज्जत है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा क्योंकि अधिकतम दर्शक आपके युवा होंगे, उनको बताना चाहूंगा कि 1950-60 में कई हमारे पॉपुलर फिल्म एक्टर्स होते थे जैसे राज कपूर, इनके गाने सोवियत संघ में इतने मशहूर थे कि वहां पे सड़कों पे टैक्सियों में राज कपूर के गाने बजते थे हिंदी में। हालांकि रूसियों को हिंदी भाषा समझ नहीं आती थी लेकिन उन्हें इतना स्नेह था भारत से, भारत के गानों से। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ये जो भारत और सोवियत संघ और रूस, अब रूस के जो रिश्ते हैं ये दशकों पुराने और बहुत गहरे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति पुतिन से ये रिक्वेस्ट की तो फौरन मान गए क्योंकि रूस कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जिससे भारत को कभी भी दिक्कत हो। और ये क्योंकि मैं काफी अध्ययन करता हूँ, काफी किताबें पढ़ता हूँ, मैं आपको ये आश्वासन के साथ दे सकता हूँ कि रूस ने कभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिसे भारत को ठेस पहुंचा हो। और यही कारण है कि जब मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया तो राष्ट्रपति पुतिन ने फौरन इस रिक्वेस्ट को मान ली।
इस मुद्दे से जुड़ी कोई और इन्फॉर्मेशन जो हमने इन सवालों में कवर नहीं की, अगर आप वो बताना चाहें तो आप बता सकते हैं सर।
नहीं मानसी जी, आपने पूरा ये जो मसला था आपने बहुत अच्छी तरह कवर किया, बड़े अच्छे प्रश्न थे। बस मैं आखिर में अपने एक स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। देखिए, मैं समझ सकता हूँ जो युवा हैं उनको नौकरी की तलाश होती है, वो चाहते हैं कि वो फटाफट पैसे कमाएं। मैं भी जब युवा था तो मेरे अंदर भी डेस्परेशन थी कि मेरी नौकरी लग जाए, मैं स्टेबल रहूं। मैं ये बातें सारी समझता हूँ, लेकिन वो नौकरी जहां पे आपकी जान जोखिम में आ रही हो, जहां पे युद्ध का माहौल ही नहीं बल्कि युद्ध हो पूरा, वहां पे जाना बगैर ट्रेनिंग के, ये आपको तो दिक्कत में डालेगा ही डालेगा, आपके परिवार को जो दिक्कत में डालेगा इसका शायद कई लोग इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि जब आदमी यंग होता है उसको उसको इन इन ज्यादा चीजों की ना वो सोचता है, क्योंकि उसके आगे कई एक पूरी जिंदगी होती है, करियर होता है। लेकिन मैं अपने अनुभव से बोलना चाहूंगा कि भारत के युवाओं को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। नौकरियां मिलेंगी आपको, थोड़ी जल्दी मिल जाए, थोड़ी लेट मिल जाए, वो लेकिन मिलेगी आपको। लेकिन ऐसी जगह पे जाके नौकरी करना जहां पे युद्ध हो और जहां ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हो, ये आपको ही नहीं आपके परिवार को इतना दुख और दर्द देगा कि इसका आप अनुमान लगा ही नहीं सकते आने वाले समय।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर और इस विषय को हमें गहराई से बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।